تب چراغ آسمان سے آج شہید اول شمس الدین ابو عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ کے مختصر سے حالات زندگی پیش ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محبان اہل بیت کی تاریخ باطل کے خلاف مسلسل جہاد کی تاریخ. یہ کوئی اتفاقی بات نہیں بلکہ انفرادی اور اجتماعی ایثار اور قربانیوں کا ایک شعوری عمل ہے. باطل کی طاقتیں جب بھی درپے آزار ہوئی تو محبان اہل بیت نے ہر طرح کی مصیبتوں کو برداشت کیا, قربانیاں دیں, لیکن حق سے منہ نہ موڑا اور شب و روز ہونے والے مظالم کو اپنے لیے سعادت سمجھا. یہی وجہ تھی کہ بلندیوں سے پھینکے گئے تو اسے عرش کی طرف پرواز سمجھا, دریاؤں میں ڈبائے گئے تو تہے آپ کو ساحل جانا, اپنے گھر بار کے لٹنے کو سرمایہ حیات اور زبان کے کٹنے کو اظہار حق کی زبان سمجھا, دہر پر چڑھائے گئے تو حرو الہی کی منزل جانا. 1300 سال کی تاریخ شیعت دراصل مظلومیت کی طویل تاریخ ہے, جس کے دامن میں فقید المثال علماء کے نام بھی نظر آتے ہیں جنہوں نے قربان گاہ شہادت کو اپنے خون سے لالہ زار بنا دیا. ان علماء کی تعداد ہزاروں میں. ایسے ہی علماء کی فہرست میں جناب شمس الدین ابو عبداللہ محمد بن جمال الدین مکی و دمشقی عالم کا نام شہید اول کی حیثیت سے موجود ہے. آپ بڑی ذہانت کے مالک تھے, مسائل فقہ میں آپ کا مقام بہت اونچا ہے. جناب جعفر نجفی کہا کرتے تھے کہ مسائل فقہ میں شمس الدین کے علاوہ میرے فرزندوں میں موسیٰ اور جعفر کا مد مقابل کوئی دوسرا نہیں. نہ کسی میں اتنی ذہانت پائی جاتی ہے اور نہ علمیت. وہ یہ بھی کہا کرتے تھے کہ میں غسل و وضو سے لے کر وعیت کے مسائل بغیر کسی کتاب کے سہارے لکھ سکتا ہوں. یہ حال شمس الدین کا ہے, جس کے لیے فقہ کے مسائل ایسے ہیں جیسے کسی کی انگلی میں انگوٹھی. جناب شمس الدین نے علامہ ہلی کی بہت تعریف و توصیف سنی تھی. آپ کو علامہ ہلی سے ملنے اور علمی مسائل میں استفادہ کا بڑا اشتیاق تھا, چنانچہ آپ اللہ گئے اور علامہ ہلی کے درس میں ایک یا دو دن شرکت کی اور کربلا و نجف کی زیارت کے لیے روانہ ہو گئے. دراصل آپ زیارتوں سے فارغ ہو کر علامہ ہلی سے علمی استفادے کے لیے ہلہ میں طویل مدت تک قیام کرنا چاہتے تھے, لیکن جب آپ زیارتوں سے مشرف ہو کے ہلہ لوٹ رہے تھے راستے میں آپ کو علامہ ہلی کا جنازہ, جس کو نجف اشرف لے جایا جا رہا تھا. آپ نے دفن میں شرکت کی اور پھر واپس آ کر علامہ ہلی کے فرزندوں اور شاگردوں کے ساتھ تقریباً 7 مہینے گزارے. جناب شمس الدین نے کئی فقہا سے اسناد حاصل کیے تھے, جیسے میر حسین ابن حیدر کرخی نے اپنے رسالہ نماز جمعہ میں لکھا ہے کہ جناب شمس الدین کے پاس 1000 فقہا کے اسناد موجود تھے, جو اس بات کی دلیل ہے کہ فقہ میں آپ کی ید توتا رکھتے تھے. یہی آپ کا سب سے بڑا اعزاز ہے. عمل الاعمال میں مصنف نے لکھا ہے کہ لمحہ آپ نے جیل میں لکھی تھی. آپ نے اس کتاب کے لکھنے کا آغاز اس وقت کیا تھا جب آپ کو موت کی سزا سنا دی گئی تھی. فطرت انسانی کا تقاضا ہے کہ موت کی خبر سننے کے بعد بڑے بڑے سورماؤں کے دل دہل جاتے ہیں, ہوش و حواس اڑ جاتے ہیں, لیکن کیا کہنے آپ کی عظمت و بزرگی اور منزل یقین کے آپ کے پائے استقلال کو جنبش نہ ہوگی. جیسے موت آپ کے لیے پیام حیات بن کر آئی ہو, جیسے یہ آپ کی دیرانہ آرزو کی تکمیل ہو, جیسے آنے والی موت موت نہ ہو, معراج محبت اہل بیت ہو. یہی وجہ ہے کہ آپ اپنی آخری سانس تک علوم اہل بیت کی ترویج و اشاعت میں مشغول رہے. آپ نے لمحہ مشقیہ صرف 7 دن میں لکھی, جبکہ اس کتاب کے ایک باب کا 7 دن میں لکھنا مشکل تھا. اور حیرت انگیز بات یہ بھی ہے کہ 7 دن میں اس کتاب کی منوان نقل ممکن نہ تھی, لیکن سوال یہ ہے کہ کس طرح آپ نے اس کتاب کو مکمل کیا ہوگا. یقیناً اس کار عظیم میں امام عصر کی امداد شامل رہی ہوگی, ورنہ ایک اہم موضوع پر किसी किताब के बगैर किताब का लिखना जुए शीर लाने के बराबर था। उलमा ने लिखा है कि लम्हा लिखने के दौरान आपके पास सिर्फ एक किताब मुख्तसर निफाह मौजूद थी, गोया आपने किसी दूसरी किताबों के बगैर यह किताब लिखी थी। आपने तखिये में ज़िंदगी बसर की और आपके ताल्लुकात सुन्नी उलमा से कायम थे, लेकिन आपको हमेशा इस बात का खदशा लगा रहता था कि कहीं दीगर फ़िरक़े के उलमा आपकी तालीफ़ात को ना देख लें, इसलिए आप हमेशा तन्हाई चाहते थे, आपके घर की जानिब कोई रुख ना करता। आलम जवानी में मुताले के दौरान आप अपने करीब एक तांबे की थाली रखते थे जो हमेशा गर्म रहती थी। कभी आपको नींद का गलबा होता तो आप गर्म थाली सर के एक हिस्से पर रख लिया करते थे जिसकी तकलीफ़ से नींद ना आती, और मुताले में मसरूफ़ रहते जिसके नतीजे में हमेशा के लिए सर के बाल झड़ गए। तकिए की वजह आप दीगर फ़िरक़ों में भी बहुत मशहूर थे। कहा जाता है कि आपने कई बार मजहबी इज्तिमाआत की सदारत की और इख्तलाफात के दरमियान चारों फ़िरक़ों की फ़िका के मुताबिक फतवे दिए। जब आपकी शोहरत हर तरफ फैल गई, कुछ लोग आपसे हसद करने लगे और नुकसान पहुंचाने के दरपे हुए, लेकिन मुखालिफिन के तमाम मंसूबे नाकाम ही रहे। तब उन्होंने शाम के हाकिम से शिकायत की कि शमशुद्दीन शिया काफिर और बिदती है, और इसी इल्ज़ाम के तहत शाम के हाकिम ने आपको शहीद कर दिया। आपकी शहादत के बारे में मुख्तलिफ रिवायात मौजूद हैं। एक रिवायत के मुताबिक आपके पैरों को दो ऊँटों पर बांधकर ऊँटों को मुखालिफ सिमतों में भगाया गया, यहाँ तक कि आपके दोनों पैर जिस्म से जुदा हो गए। इसी हालत में आपकी शहादत वाकई हुई और आप शहीद अव्वल कहलाए। एक दूसरी रिवायत मुअल्लिफ असासुल उलमा ने लिखी है कि मैंने अपने बुज़ुर्गों और मुख्तलिफ लोगों के अलावा अपने वालिद बुजुर्गवार से सुना है कि उन दिनों शिया हुक्मरान सुल्तान शाह खुरासान अली मुवीद ने जनाब शमशुद्दीन के पास एक शरीफुल नफ्स बाइज्जत नुमाइंदा भेजा ताकि वह शहीद अव्वल को खुरासान ले आए, लेकिन आपने इनकार कर दिया और एक फतवा को रवाना किया जिसको आपने शरह लुमाह में लिखा। इसी रिवायत को काजी नूरुल्ला शूस्त्री ने मजलिस में लिखा है। दमिश्क का काजी इब्ने अमूबा एक शैतान सिफत मगरूर शख्स था। शहीद अव्वल का नौजवानी में हम मकतब था। उसने देखा कि अहले सुन्नत के चार फ़िरक़े और शिया फ़िरक़ा आपसे बड़ी अकीदत तो मोहब्बत रखता है। वह हसद में मुब्तला हो गया और फिर हुआ यूं कि वह किसी तरह दमिश्क का काजी बन गया। अब इसको खेल खेलने का मौका मिल गया था। उसने आपके खिलाफ तरह तरह के मंसूबे बनाए, लेकिन वो आपका कुछ न बिगाड़ सका। अवाम का आप पर एतमाद और भरोसा था। आखिरकार उसने अवाम में ये मशहूर कर दिया कि शमशुद्दीन काफिर और बिदती हैं। दूसरी तरफ बेईद मरद शाह दमिश्क को मजबूर किया कि वो आपको कत्ल कर दे। बहरहाल काजी बुरहानुद्दीन मलकी वो इबाद बिन जमाता शाफी ने पहले दो रकअत नमाज पढ़ी, बाद हज़ां आपके कत्ल का फतवा दिया और अबेद मरद के हुक्म से आपको सजाए मौत सुनाई गई। जिस वक्त आपको कत्ल किया जा रहा था, इब्ने मुबिया वहाँ मौजूद था। इधर जल्लाद कत्ल के लिए आगे बढ़े, इधर वो काजी नौजवानी और मकतब के वाकया बयान करते हुए रोने और चिल्लाने लगा। आपने उसकी आंखों में मगरमच्छ के आंसू देखकर कहा, तेरी माँ ने तेरा नाम गलत नहीं रखा। आपसे कहा कि तौबा कर लो तो आज़ाद कर दिए जाओगे, लेकिन आपने इल्ज़ाम से इनकार किया और तौबा के लिए किसी तरह तैयार न हुए। पहले आपको तलवार से कत्ल किया गया, फिर लाश दार पर खींची गई और उस पर पत्थर बरसाए गए और आखिर में लाश को जला दिया गया। आपकी शहादत दमिश्क के किले में 19 जमादिल अव्वल सन 786 हिजरी में हुई। पंचशबे का दिन था और सुबह का वक्त। किताब चिराग आसमां से आज शहीद सानी शेख ज़ैनुल आबिदीन रहमतुल्लाह अलैह के मुख्तसर से हालात ज़िंदगी पेश खिदमत है। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। शेख ज़ैनुद्दीन बिन नूरुद्दीन आमली 13 शव्वाल सन 911 ईस्वी में पैदा हुए। आप शहीद सानी के नाम से मशहूर हैं, आपके हसीन और जमील चेहरे की बहुत तारीफ की गई है। शेख जैनुद्दीन कमसनी से मदरसा जाया करते थे, बचपन ही से आपको खेल कूद से दिलचस्पी न थी। आपके वालिद उस्ताद से कहा करते थे, इस बच्चे को डराने या मारने की ज़रूरत नहीं, ये खुद अपनी तालीम में दिलचस्पी ले लेगा। इब्तदाई उम्र में आपने तालीम के मुख्तलिफ मनाजिल को तय किया। सिने शऊर को पहुँचने के बाद फरीक़ैन की फ़िक़ा व हदीस और तफसीर का मुतायला शुरू किया। शाम व मिस्र और हज्जाज के उलमा व फ़ुक़हा से इस्तेफादा किया। रफ्ता रफ्ता आपको उन उलूम पे कामिल उबूर हासिल हो गया। जब आपकी इल्मियत अपने उरूज पर पहुँच गई, कुस्तांतिनिया का सफ़र इख्तियार किया और हुकूमत में असर पैदा करने की गर्ज से 18 दिन में एक रिसाला मुरत्तब किया और खाजी शहर को पेश किया। इस रिसाले को पढ़कर खाजी आपकी जहानत और तजरे इल्मी से बेहद मुतासिर हुआ और मज़ीद तशफ़ी के लिए उसने मुख्तलिफ मसाइल पर तस्करा किया और आपकी काबिलियत का लोहा मान लिया। दरअसल यह खाजी बड़ा इल्म दोस्त था, उसने आपकी बड़ी कदर की और हुकूमत से वजीफ़ा मुकर्रर करवा दिया और अपने शख्सी असर और रसूख को काम में लाकर लब्बैक का मदरसा भी आपके सुपुर्द कर दिया। इस मदरसे में शेख जैनुद्दीन ने मज़हब खमसा की तदरीस शुरू की। चंद माह गुजरे थे कि कुस्तांतिनिया में आपकी शोहरत इस हद तक बढ़ गई कि मुफ्ती आज़म कहलाने लगे और लोग आपकी बेइंतहा तज़ीम व तकरीम करने लगे। शोहरत और इज़्ज़त की इस बुलंदी पर पहुँचने के बावजूद घर के बहुत से काम खुद अंजाम देते। दिन भर मदरसे की थका देने वाली मसरूफियात के बाद रात को बाज़ार से सौदा सलूफ ले आते थे, लेकिन सुबह को मस्जिद में नमाज़ पढ़कर जब दर्स देने बैठते तो ऐसा मालूम होता जैसे इल्म का एक समंदर है जो ठांटे मार रहा है और देखने वाले को हैरत होती कि ये वही शख्स है जो अपने घर के काम खुद अपने हाथों से अंजाम देता है और इल्म के समंदर में डूबा हुआ है। आपकी जिंदगी दीगर जैयद उलमा की तरह हैरतअंगेज वाक़ियात से भरी पड़ी है, जिनके मुतायले से आपकी ज़ोहद तक़वा और परहेजगारी के अलावा नफ्स की तहारत पाकिजगी का पता चलता है। यूँ तो आपकी ज़ात से बहुत से वाक़ियात मंसूब हैं, लेकिन चंद वाक़ियात ऐसे हैं जिनको आपने खुद बयान किया है। मुंदरजा ज़ैल वाक़िया आपकी तहरीर करदा है। 10 रबीउल अव्वल बरोज़ चार शंबा सन 960 ईस्वी की बात है। मैं एक कारवान के साथ सफ़र कर रहा था। कुछ देर के लिए कारवान ने रमला, एक गांव का नाम है, मैं अपने सफ़र को मुनख़ते किया। रमला में एक वसी और अरीज़ गार मौजूद था जिसमें कई पैगंबर दफन थे। उसी गार में एक जामे मस्जिद भी थी। मैं गार के दरवाज़े पर पहुंचा, देखा कि दरवाज़े पर खुफल लगा है और अतराफ व अकनाफ में कोई निगरान कार मौजूद नहीं। मेरी हैरत की इंतहा न रही, खुफल खींचा तो खुल गया। मैं मस्जिद में दाखिल हुआ और नमाज के बाद दुआ में मशगूल हो गया। मुझे कारवान के चले जाने का मुतलक ख्याल न रहा। नहायती तेज़ी के साथ गांव लौट आया, लेकिन वहां कारवान मौजूद न था। मालूम हुआ कि अरसा कबल कारवान रवाना हो चुका है। मैं पैदल कारवान के रास्ते पर चल पड़ा, लेकिन कुछ दूर चलकर थक गया। कारवान मेरी नज़रों से ओझल था। उसी लम्हा एक अजनबी खच्चर पर सवार था मेरे करीब आकर पूछा कि तुम क्या चाहते हो। उसने मुझे अपने खच्चर पर सवार हो कर लिया। एक लम्हा तौकफ के बाद बगैर मैं उसके पीछे खच्चर पर सवार हो गया। हम आने वाहद में कारवान से जा मिले। उसने कहा, जाओ अपने अहबाब में शामिल हो जाओ। मैं खच्चर से उतर पड़ा। वह शख्स कारवान में दाखिल हुआ और सूरत से गायब हो गया। मैंने उसको तलाश किया मगर वह अजनबी न मिला। मोहम्मद बिन अली बिन हसन ने लिखा है कि कुछ लोग शेख जैनुद्दीन के साथ सफ़र कर रहे थे। अजबक का एक सुल्तान हज से वापस हो रहा था। उसके काफिले में जो लोग मौजूद थे उनमें एक शिया आलिम और एक मुल्ला था। मुल्ला सुल्तान के साथ काफिले की रहबरी कर रहा था। जिस मकाम पर शेख जैनुद्दीन ने قیام کیا تھا، وہاں سے کچھ فاصلے پر سلطان کے قافلے نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ شیعہ عالم نے شیخ زین الدین کا غائبانہ تعارف کروایا۔ سلطان آپ سے اس حد تک متاثر ہوا کہ ہر منزل پر ملنے آتا اور مختلف مسائل پر تبادلہ خیال کرتا۔ ان ملاقاتوں نے سلطان کی عقیدت میں اور بھی اضافہ کر دیا۔ ملا کے ساتھ سفر میں ایک بوڑھا بھی تھا۔ سلطان کے دل میں شیخ زین الدین کی بڑھتی ہوئی محبت اور عزت کو دیکھ کر اس بوڑھے کے سینے میں حسد کی آنکھ بھڑک اٹھی۔ اس نے ملا سے کہا، جب ہم بغداد پہنچیں گے اس عالم کو سزا دیں گے۔ کسی طرح شیخ زین الدین کو اس منصوبے کا علم ہو گیا۔ آپ نے سوچا، اگر میں زیارت کے غرض سے کربلا جاؤں تو یہ بوڑھا مجھ پر ستم ڈھائے گا۔ آپ نے طے کیا کہ موقع ملنے پر کربلا جاؤں گا، ورنہ گھر لوٹ جاؤں۔ جب قافلہ موصل پہنچا تو بوڑھا سخت تلیل ہو گیا، اس کو راستے ہی میں چھوڑ دیا گیا۔ آپ نے آزادی کے ساتھ کربلا اور دیگر مقامات مقدسہ کی زیارت کی۔ ایک صاحب خیر جس کا نام شمس الدین بن ہلال تھا، وہ زین الدین کی مالی مدد کیا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ جناب زین الدین نے سفر کا ارادہ کیا۔ وہ جس کاروان کے ساتھ سفر کرنا چاہتے تھے، اس کا میر کاروان شام کا رہنے والا کافر ملحد تھا۔ اس کے چہرے کو دیکھ کر شمس الدین بن بلال نے کہا کہ اس کاروان کے ساتھ سفر مناسب نہیں، آپ نے دوسرے مسافرین کو بھی خطرے میں سے آگاہ کیا۔ لیکن زین الدین سفر کا ارادہ کر چکے تھے، وہ اپنے فیصلے پہ قائم رہے۔ سفر کا آغاز ہوا۔ کٹلا نامی گاؤں میں جب یہ کاروان پہنچا، وہاں کے حکمران نے کاروان کو روکنے کا حکم دیا تاکہ مسافروں سے محصول لیا جا سکے۔ تمام مسافرین کو حاکم کے سامنے پیش کیا گیا۔ اس وقت جناب زین الدین نے دیکھا، شام کا وہی کافر ملحد بادشاہ کے قریب بیٹھا ہے۔ اس نے آپ کو دیکھ کر بادشاہ سے کچھ کہا۔ زین الدین نے اس سے پوچھا، تم میرے بارے میں کیا کہہ رہے ہو؟ اس نے جواب دیا، حاجی شمس الدین تمہارا سرپرست ہے، وہ تمہاری مالی امداد کرتا ہے، وہی تم کو مصر بھیج رہا ہے۔ یہ سن کر آپ کے چہرے کا رنگ متغیر ہو گیا۔ آپ نے سوچا، بادشاہ اور اس حلقہ بگوش میرے مذہب کے دشمن ہیں، یہی لوگ پتہ نہیں میرے ساتھ کیا سلوک کرے۔ کاروان کے تمام مسافروں کی تلاشی لی گئی اور ان سب کو محصول ادا کرنا پڑا۔ لیکن جناب زین الدین کے روب و دبدبے کا ان پر ایسا خوف طاری ہوا کہ نہ تو آپ کے سامان کی تلاشی لی گئی اور نہ ہی محصول کا مطالبہ کیا گیا۔ دیگر افراد کے ساتھ بادشاہ بھی آپ کی شخصیت سے متاثر ہوئے بغیر نہ رہ سکا۔ جب کاروان کے رخصت ہونے کا وقت آیا، بادشاہ نے اظہار عقیدت کے طور پر ایک خط آپ کے حوالے کیا۔ خط کا مضمون اس کے جذبے کا انحدار تھا۔ اس نے لکھا تھا، اس خدا رسیدہ متقی پرہیزگار انسان سے کسی مقام پہ نہ تو محصول لیا جائے اور نہ ہی آپ کے سامان کی تلاشی لی جائے۔ بادشاہ کے اس رویے کو دیکھ کر اس ملحد نے کہا، آپ نے سب کی نظروں کو خیر کر دیا، آپ کے روبرو کسی فرد کو مجال گفتگو نہیں۔ یہی اٹوٹ حقیقت ہے کہ عظیم المرتبت علماء دین پر خداوند عالم کا غیر معمولی فضل و کرم ہوتا ہے اور ان کے مقابل آئے ہوئے دشمن ناکام ہو جاتے ہیں۔ محمد بن علی بن حسن لکھتے ہیں کہ سن 956 عیسوی جناب شیخ الدین عراق کی زیارتوں سے واپس ہوئے۔ آپ نے مجھ سے کہا، مسجد کوفہ کے قبلے میں تھوڑا سا فرق موجود ہے۔ میں نے اپنے اجتہاد کے باعث تحقیق کی اور تبدیلی کے لیے تجویز رکھی۔ طلباء نے میری تجویز کو تسلیم کر لیا، لیکن ایک شخص جس کا نام موسیٰ ہے میری تجویز سے انکار کیا۔ موسیٰ نے 3 دن تک مجھ سے گفتگو کی۔ اس دوران بہت سے قابل ترین علماء نے میری تجویز کو منظور کر لیا اور کسی قسم کا اعتراض نہیں کیا۔ ایک شب موسیٰ نے خواب دیکھا کہ سرکار دو عالم ختمی مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجمع سے مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں، شیخ زین الدین نے مسجد کوفہ کے قبلے کا صحیح تعین کیا ہے۔ آپ نے مزید فرمایا، اگر تم قبلہ کو چھوڑ کر نماز پڑھو گے تو تمہاری نماز باطل ہوگی۔ خواب سے بیدار ہو کر موسیٰ بھاگا بھاگا میرے پاس چلا آیا، میرے ہاتھ چومے اور معافی کا خواستگار ہوا۔ میں نے وجہ پوچھی تو اس نے اپنا خواب بیان کیا۔ ایک مرتبہ کا ذکر ہے کہ آپ شب جمعہ ذریعہ مبارک کے قریب تشریف فرما ہو کر कुरान की तिलावत फरमा रहे थे। आपने खुदा से दुआ की, खुदावंद मेरे दुश्मन मेरे साथ मुस्तकबिल में किस तरह का सलूक करेंगे और मेरा खात्मा कैसा होगा, इस किताब मुकद्दस के ज़रिए मेरी रहबरी फरमाए। आपने कुरान खोला, जो आयत बरामद हुई इसमें वो सारे हालात मौजूद थे जो वक़ूअ पज़ीर होने वाले थे। इस आयत को पढ़कर आप सजदे में गिर पड़े और खुदावंद करीम का शुक्र अदा किया। एक मौके पर आपने अपने साथियों को वो मकाम भी दिखलाया जहां आपकी शहादत वाक़ होने वाली थी। मोहम्मद बिन हुसैन जनाब ज़ैनुद्दीन के शागिर्द थे। आपने अपने उस्ताद के बारे में अपनी तालीफात में बहुत कुछ लिखा है। एक शब मोहम्मद बिन हुसैन ने मिस्र में ख्वाब देखा कि सरकार दो आलम ख़त्मी मरतब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाब ज़ैनुद्दीन से फरमा रहे हैं, खुदा बहुत जल्द तुम पर अपनी रहमत नाजिल फरमाएगा। मोहम्मद बिन हुसैन ने अपने ख्वाब की तफसील बयान नहीं की, सिर्फ खुलासा लिख दिया। आपकी हयात का नाकाबिल यकीन कारनामा यह है कि सारी उम्र तखैये में दुश्मनों के साथ बसर की, अहले बैत की तबलीग और इशात में ताउम्र मसरूफ़ रहे, लेकिन आखिरी उम्र में यह रास फाश होकर रहा। यह ज़माना वो था कि आपकी शरह लम्हा की तालीफ में मशगूल थे। आप में सैयद मुर्तज़ा इल्मुल्हुदा को देखा कि आपने बहुत सारे उलमा की दावत का एहतमाम किया है। जिस वक्त शेख ज़ैनुद्दीन वहाँ पहुँचे, सैयद मुर्तज़ा ने आपकी बड़ी ताज़ीम की और आपका हाथ थाम कर शमशुद्दीन अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन जमाल मक्की व दमश्की के पहलू में लाकर बिठा दिया। आपसे बेदार हुए और अपने एक महरम रास को बतलाया कि मैं शहीद सानी होऊंगा। आप हज के लिए मक्का मौजमा तशरीफ ले गए। एक दिन मस्जिद हराम में नमाज असर पढ़कर राहत पाई थी कि शाह कस्तंतीना के हुक्म से गिरफ्तार किए गए। चंद दिन मक्के में कैद रहे, फिर वहाँ से आपको कस्तंतीना लाया गया और रुस्तम बादशाह वजीर कस्तंतीना के हुक्म से बजुर में तशी समंदर के किनारे ले जाकर गर्दन मार दी गई। इमाम मजलूम की तासी में 3 रोज़ तक आपका लाशा बेगोरों कफन पड़ा रहा। तरकमानों की एक जमात ने रात को देखा कि इस जगह से कुछ अनवार की आसमान से आमो तरफ जारी है। सुबह को सब लोग जमा हुए और आपके दफन का सामान किया और मज़ार पर एक हुब्बा तामीर करवाया। एक रिवायत यह भी मिलती है कि जिस वक्त आपके इल्म की शोहरत दूर दूर तक फैल गई थी, रोम के सुल्तान ने शहीद सानी को लाने के लिए 7 आदमी रवाना किए। ये लोग बड़े जालिम और संगदिल थे। रास्ते में उन्होंने जा बजा जनाब ज़ैनुद्दीन की तौहीन और तजलील की। दरअसल इन लोगों ने आप में बाज़ महरुल उखूल बातों का मुशाहिदा किया और इनके ये खौफ हो गया था कि अगर सुल्तान आपकी गैर मामूली सफा से मुतासिर हो जाए तो फिर हमें अपनी जान से हाथ धोना पड़ेगा। यही वजह थी कि इन लोगों ने आपके कत्ल का मंसूबा बनाया और रास्ते में ही बेदर्दी से आपकी गर्दन उड़ा दी और सर सुल्तान के पास ले गया। एक शख्स सैयद अब्दुल रहीम अब्बासी रियासत में एक आला ओहदे पर फायज था। यह शिया दोस्तान अहले बैत से था। इसका सिलसिला नसब अब्बास इब्ने अब्दुल मुत्तलिब से मिलता था। जिस वक्त अब्बासी को आपके कत्ल का इल्म हुआ, वो हलम और दवात देकर सुल्तान की खिदमत में हाजिर हुआ और कहा, मैं आपकी मुलाजिमत से मुस्तफ़ी होना चाहता हूँ। सुल्तान ने वजह दरख्वास्त की। अब्बासी ने कहा, आपके मुलाजिमीन क़ानून शिकनी के मुर्तकिब हुए हैं। आपने शेख ज़ैनुद्दीन को बुलवाने के लिए चंद आदमी रवाना किए थे ताकि इस आलिम की सोहबत से आप और दीगर उलमा इस्तेफादा कर सकें, लेकिन किस कदर अफसोस का मुकाम है कि इन लोगों ने आपके हुक्म की तामील न की और अपने खुद साख्ता फैसले पर अमल करते हुए इस आलिम दीन की गर्दन उड़ा दी और सर आपके सामने पेश किया। अगर आपने इस उदुल हुक्मी पर इनको सज़ा ना दी और खामोशी अख्तियार की तो मुझे डर है कहीं मुस्तकबिल खातिल आपके लिए ख़तरा ना बन जाए, और इस बात का भी इम्कान है कि किसी दिन आप मुझे याद फरमाएं और ये लोग मेरे बजाय मेरा सर आपके सामने ला कर रख दें। इसलिए बेहतर है कि मेरा इस्तीफ़ा कबूल कर लें। सुल्तान पर अब्दुल रहीम अब्बासी के बातों का बेहद असर हुआ। उसने कहा, इन मुजरिमीन को तुम्हारे हवाले करता हूँ,
तुम जो चाहे उनको सजा दो। सुल्तान का हुक्म और शहीद सानी के खातिल इस सैयदजादे के हाथ में थे। उसने हुक्म दिया कि इन सातों खातिलों को आग में फेंक दिया जाए। इसी तरह शहीद सानी के खातिल वासिले जहन्नुम हुए। आपकी शहादत सन 966 ईस्वी में 56 बरस की उम्र में हुई। आपके एक शागिर शेख भाई जनाब शेख हुसैन के वालिद लिखते हैं कि एक मरतबा उस्ताद शहीद सानी के हमरा घोड़े पर सफ़र कर रहे थे। दौरान सफ़र एक ऐसा मकान भी आया जहां पहुंचकर मेरे उस्ताद के चेहरे का रंग मुतगैर हो गया। आपने कहा यहाँ खुदा तर्स इंसान का कत्ल किया जाएगा। चंद दिन बाद इसी मकाम पर आपकी शहादत वाक़ हुई, जिस मकाम की आपने निशानदेही फरमाई थी। जिस वक्त आपकी शहादत वाक़ हुई, कहा जाता है कि इस्तांबुल में तूफ़ानी बारिश हुई और दरियाओं में तोगयानी आई। क़यामत का मंज़र था। गुमान यह हो रहा था कि इस्तांबुल तबाह व बर्बाद हो जाएगा। आपकी तालीफात में यह शरह लुमहिया व मुश्किया मुनतुल मुरीद फिल आदाबुल मुफीद वल अल मुस्तफीद असरार सलात वगैरह हैं।